ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है इस समय, हैप्पी हेल्दी एंड हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्टाइल, हाँ जॉयफुल लाइफ। दिस इज ओवरऑल थीम, बट अभी के विषय का जो टाइटल है वो ये है, हर किसी का यही है पक्ष, बेहतर स्वास्थ्य को बनाओ लक्ष्य। क्यों? क्योंकि सबने सीख लिया है बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य अनमोल है, स्वास्थ्य का कोई मोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है, कौन सा? अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है जो दवा कम देता है लेकिन एडवाइस ज्यादा देता है, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करता है। बट वही तो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, नहीं तो दवाइयां कई बार जेब में पड़ी होती है, लेते ही नहीं है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना स्वास्थ्य का प्राथमिक कदम है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हम सभी जानते हैं स्वास्थ्य का और सबसे पहला कदम है, उससे भी पहले स्वच्छता। तो दुनियावी डॉक्टरों से हमें स्वच्छता के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य जगत की सफाई पर ध्यान खिंचवाते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो आज डॉक्टर पधारे हैं, बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों की सफाई पर जब ध्यान रखेंगे तो कैसे हम अच्छे स्वास्थ्य के धनी बन सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनका कौन सा अभियान चल रहा है? स्वच्छता। तो स्वच्छता बाहर की भी अंदर की भी। तो अंदर की स्वच्छता होगी तो बाह्य को महत्व देंगे, और बाह्य को महत्व देंगे तो बाहर भी सब कुछ स्वर्ग बन जाएगा। तो एक बहुत सुंदर विषय को लेकर हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर श्रीमन साहू जी। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आपने MBBS, DA, MD, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी किया है। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में HAD हेड कहते हैं, उसके आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं, और जहां तक मैं समझती हूँ शायद हर सप्ताह भ्रमण करते हैं ना, हर सप्ताह आप टूर पे होते हैं, वीकेंड पर स्वास्थ्य लाभ देते हैं। यहाँ पर उनके पास जो आते हैं यहाँ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, और जो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं खुद चलकर सबके पास जाते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करके सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आपने MBBS संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया है, DA बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और MD डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, और 1985 से 1991 तक आपने गवर्नमेंट जॉब भी की है एज एन असिस्टेंट सर्जन। अभी वर्तमान में आप फुल टाइम डेडिकेटेड सर्विस दे रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में 1991 से, और मैं समझती हूँ 1985 से आप इस अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हैं। तो स्वयं एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों को जीवन में स्थान देते हुए हम तन मन धन सबको स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी पर प्रकाश डालेंगे हमारे डॉक्टर राजयोगी भ्राता श्रीमन साहू जी।
ओम शांति। आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, एक प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू, द आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जी ये दो बच्चे आपके ही फोटो देखो, बचपन में आप दोनों ऐसे ही थे. सो द आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, जीवन में बहुत आवश्यक है. जीवन में स्वस्थ रहना भी सभी चाहते हैं और खुश रहना भी सभी चाहते हैं, है ना. नहीं कोई यहां है जो हेल्दी रहना नहीं चाहते हैं, खुश रहना नहीं चाहते हैं, है कोई? सभी चाहते हैं. वेरी गुड. जीवन में हम सभी मनुष्य तीन चीजें जरूर चाहते हैं कि जीवन में तीन चीजें हो. ऐसे तो बहुत सारी चीजें आवश्यक है जीवन में, लेकिन मुख्य रूप में तीन चीजें हम कामना करते हैं, आश करते हैं. कौन सी तीन चीजें? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि तीनों में से आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो? हैप्पीनेस. अच्छा, सच. देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में दो बाबा है, एक हनी बाबा, एक मनी बाबा. तो मनी बाबा सबको ज्यादा प्रिय है. तो पैसा आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय लोगों को पैसा है. ये कौन है? वाह, पहचानते हैं. जो महाभारत सीरियल देखे होंगे सब जानते हैं. ये महाभारत में कर्ण, आप जानते हैं महाभारत पढ़े होंगे, कर्ण बहुत ही महावीर महायोद्धा था. लेकिन महाभारत युद्ध में वो हार गया. किसलिए जानते हो? नहीं नहीं. देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन एक तीर मारता था, कर्ण का रथ कितने पीछे हट जाता था, कितने जोजन पीछे हट जाता था. फिर कर्ण आता था, फिर लड़ाई करता था, फिर अर्जुन एक तीर मारता था, इसका रथ कहां पीछे चला जाता था. एक बार कर्ण ने एक तीर मारा तो अर्जुन का रथ सिर्फ 10 कदम पीछे खिसक गया. तो भगवान ने कर्ण की बहुत महिमा की. कर्ण एक महावीर है, महायोद्धा है. तो अर्जुन को सहन नहीं हुआ. अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं इसका रथ को इतने बार पीछे धकेल दिया, आप मुझे एक बार भी मेरी महिमा नहीं की, और ये मेरा 10 कदम ही खिसकाया तो आप इतनी महिमा करते हो इसकी. तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, उसका रथ तो एक साधारण रथ है, तेरे रथ में मैं स्वयं विराजित हूं. मारुति ऊपर बैठ के ध्वजा पकड़ के बैठा है हनुमान. 33 करोड़ देवी देवता इस रथ में है, और इस रथ को अगर 10 कदम भी खिसका दिया, ओ महावीर है कि तू महावीर है. ये तो कहानी है, कहने का भावार्थ था. कर्ण इसलिए हार गया था कि कर्ण का रथ जमीन में धस गया. और उसी वक्त कर्ण कहता है, अर्जुन मुझे अभी वक्त दे. ये योद्धा का नियम नहीं है कि कोई मुसीबत में है तो उसके ऊपर आक्रमण करे. तुझे रणनीति समझाता हूं, सुन. तो उस समय भगवान ने कहा, अरे ये तुझे रणनीति समझा रहा है, जब तेरे अभिमन्यु को 7 महारथी एक ही साथ घेराव करके वध कर दिए, उस समय ये भी तो था. जब द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र हरण कर रहे थे, यही तो था. ऐसे अभी ही वक्त है इसको मार, नहीं तो नहीं मर सकता है. तो कहने का मतलब है, उसी वक्त जब अर्जुन उसको तीर चलाया वो मर गया. कहने का तात्पर्य है, हम ये तो कहानी है, हमको शिक्षा देने के लिए कहानी है कि ये शरीर एक रथ है, इसमें आत्मा रथी है. आत्मा कितनी भी शक्तिशाली है, लेकिन ड्राइवर कितना भी बहुत होशियार हो, उसकी गाड़ी पंक्चर है, क्या करेगा? क्या करेगा? तो जीवन एक संग्राम है. इस जीवन संग्राम में जिसका शरीर रूपी रथ ठीक नहीं है, कभी भी हार जाएगा. इसलिए शरीर को बहुत ठीक रखना बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिक साधना के लिए भी इस शरीर रूपी रथ भी मजबूत होना, जो हमारे ऋषि महर्षि सब प्राचीन काल में होके गए हैं, उनको रियलाइजेशन हुआ था. इसलिए आज से हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि हम सभी को योगासन सिखा के गए थे. योगा ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और आसन ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए. आसन इज ए पोस्चुरल एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, शरीर को अंग प्रत्यंग को कैसे एकदम ठीक रखें, स्टिफनेस ना हो, बीमारी ना हो, इसलिए एक व्यायाम है. लेकिन मन को सदा कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए योग है. जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, परंतु समय अनुसार धीरे धीरे योग को तो लोग भूल ही गए और वो आसन प्राणायाम को ही योगा कह देते हैं। वास्तव में योगा भी कुछ नहीं होता है, योगा योग प्लस आसन ही योगासन, ओ और अ मिलाने से आ होता है। तो आज इस शारीरिक व्यायाम को ही लोग योगा कह देते हैं और वही करते रहते हैं। नहीं, अगर संपूर्ण स्वास्थ्य बना, हमारा मन भी ठीक हो, तन भी ठीक हो, तभी हम कहेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्यवान। तो कहने का मतलब है, प्राचीन काल में हमारे सभी ऋषि महर्षि सभी इन्होंने भी अनुभव किया था कि शरीर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, साधना के लिए शरीर ठीक होना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है, फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। हमारे महात्मा गांधी उन्होंने कहा था, इट इज नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इट इज द हेल्थ विच इज द रियल वेल्थ। अगर किसी देश में हर कोई बीमार है तो उस देश का हालत कैसे होगा, सोचिए तो सही। जीवन में आपके पास कितने धन संपत्ति, महल माड़ी गाड़ी मोटर सब कुछ है, लेकिन बीमार हो, खटिया से उठ नहीं पाते हो, लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, आप देख रहे हो, खा नहीं सकते हो, तो मजा आएगा। तो जीवन में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेल्दी होगा वो धन रखेगा, जो बीमार हो गया जितना धन कमाया है हॉस्पिटल में डिपॉजिट करेगा, जो हेल्दी होगा वो हैप्पी होगा, ठीक है ना। नहीं तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में। लेकिन देखा गया है आज दुनिया में अधिकतर लोग, आप देखना, पैसा पैसा पैसा, 50 साल तक दिन रात एक करके अपना स्वास्थ्य भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे, परिवार भूल जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, खाली पैसा, कैसे पैसा चाहिए। और 50 साल के बाद अचानक हार्ट अटैक हो गया, फिर जितना पैसा कमाया था एक हफ्ते में आईसीयू में दे दिया, इसको बुद्धिमान कहेंगे। तो जीवन में एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारे भारत और किसी में, सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो ना हो, किसमें प्रसिद्ध है जानते हो, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भारत में, सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर भारत में, और डायबिटीज में भी हम नंबर वन होने वाले जा रहे हैं। तो खुशखबरी है ना, नहीं? तो आज बीमार क्यों है, क्योंकि भारत जैसा देश कहीं नहीं, भारत विश्व का गुरु है, परंतु आज घर घर में बीमारियां क्यों क्यों, क्योंकि आज थोड़े समय के अंदर आप देखे होंगे ये 50 साल के अंदर ही कितना चेंज हो गया हमारे भारत में, कितना क्या क्या परिवर्तन हो गया। हम सभी का बचपन याद कीजिएगा, हम कहीं भी छलांग लगा देते, तालाब में नहा लेते थे, कहीं का पानी पी लेते थे नलका का, कहीं आम का पेड़ से गिर गया, छिल गया थोड़ा, ऐसे धूल लेके ऐसे लगा देते थे, ठीक हो जाता था। आज करके दिखाओ, आजकल के बच्चे तो बोतल के पानी के बिना पी नहीं सकते दूसरा कुछ। एक जनरेशन के अंदर क्या क्या चेंज हो गया है ना। नहीं तो अभी जो चेंज हो गया, देखिए पहले हमारे भोजन कैसा था, हमारे घर में, किसी के घर में जाओ, हमारी माताएं कितने सुंदर भोजन बना के खिलाते हैं सबको, कितना दिल खुश हो जाता है, कितने वेरायटी, और हम सभी कितने वेरायटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खाते थे। आजकल फ्रूट्स भी खाओ देखो, सब कार्बाइड सोल्यूशन में, इथिलीन सोल्यूशन में डुबो देते हैं, दो घंटे में पूरा पीला हो जाता है, खाओ तो ऐसा बदबू, कोई टेस्ट नहीं। तो अभी आजकल हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आपको पता है, एक बर्गर में 10 ग्राम नमक होता है, 10 ग्राम, सारे दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम खाना चाहिए, 4 ग्राम खाना चाहिए। हमारे बच्चे 3-4 बर्गर खा जाते हैं तो क्या हाल होगा। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों को, जबकि हम मेडिसिन पढ़ते थे हमारे प्रोफेसर्स कहते थे हाई ब्लड प्रेशर बुढ़ापा की बीमारी है, हार्ट अटैक बुढ़ापा की बीमारी है, डायबिटीज भी बुढ़ापा की, ये वेस्टर्न कंट्री डिजीज है, हमारे देश की बीमारियां नहीं है। लेकिन आज देखिए घर घर में बच्चों बूढ़े सबको, और पहले हम कितने एक्टिव थे देखना, भाग दौड़ करके सब काम करते थे, आजकल बॉम्बे में आदमी जितने नहीं है गाड़ी मोटरें ज्यादा है, उसे मच्छर से भी ज्यादा। और देखिए क्या हाल हो गया है, हम सभी हिलना नहीं डुलना नहीं, बैठे रहते हैं, क्या हाल होगा, सबका सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तीसरी बात है, पहले जीवन कितना तनाव मुक्त था, सभी एकदम स्ट्रेस फ्री थे, आजकल बच्चे से लेके बूढ़े जिसको देखो सबको टेंशन टेंशन टेंशन, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन, क्यों, पढ़ाई का टेंशन है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में हमारा बैग कैसा था याद करिए,
छोटा सा ही बैग था, एक स्लेट एक पेंसिल एक कुछ था। आजकल बच्चों का बैग जैसे कि कोई गेहूं की बोरी पीठ में लाद करके सीधा भी खड़े नहीं होते, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। और पहले देखो बच्चे कैसे खेल कूद करने के लिए आउटडोर गेम में सब जाते थे, भागते थे। और आजकल देख लो क्या हाल है, आजकल देखो क्या हाल है। पहले हम खेलने जाते थे तो अंधेरा हो जाता था, माता पिता जाके कान पकड़ के, अरे अंधेरा हो गया घर आ, खींच के लेके आते। आजकल घर से निकलते ही नहीं है, कान पकड़ के जा खेलने के लिए, कोई भी जाता नहीं है। आजकल हमारे जीवन शैली क्या हो गया देखो, जहां बैठ के खाते रहना टीवी देखते रहना, यही लाइफस्टाइल हो गया है। इसलिए आज जो बीमार है कारण यही है। तो दिन रात टीवी देखते रहो और खान पान में कोई संयम नियम नहीं तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। मोटू देखो सामने इडियट बॉक्स, टीवी देखते देखते खा रहा है, कितना खा गया खुद को भी पता नहीं। और हमारी जीवन शैली कैसी हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो क्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल माने क्या, व्हाट इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल? हम कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं, और सवेरे उठते ही हाय मेरा गर्दन हो गया ना स्पॉन्डिलाइटिस। और आपको आजकल जो यंग जनरेशन है आप देखना, रात को कितना लेट सोते हैं, सवेरे कितना लेट तक उठते हैं। हमारे देश का ही कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हेल्दी वेज। तो आज सभी माँ बाप भी लेट खाते हैं, बच्चे भी लेट खाते हैं, सोते हैं लेट। मैं गया था कुछ दिन पहले उल्लासनगर, रात को 1:30 बजे ट्रेन पहुंचा, तो उतर के मैं कार में सेंटर जा रहा था। मैं वंडर खाया, मैं आश्चर्य हुआ, मैं सोचा कि दिन का 1:30 बजा है कि रात का 1:30 बजा है, क्योंकि सारे दुकान बाजार एकदम पूरा खुला, बिल्कुल लोग इतना रास्ते में भीड़ भड़ाका, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई भेल पूरी खा रहा है। मैं सोचा ये दिन का 1:30 बजा है क्या। पता चला 4 बजे तक लोग सब दुकान बाजार खोलते हैं, बंद करते हैं, खा के सोते हैं, 12 बजे उठेंगे और दुकान खोलेंगे। वहां हमारी बहन बता रही थी यहाँ आंख बंद करके ऐसे एक पत्थर मारो जिसके शरीर में लगे उसको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि हम लोगों का तो आज साइंटिस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा सोने से भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक हो रहा है, और कम सोने से भी, बोथ इनएडिक्वेट एंड एक्सेस, दोनों सोना बहुत हार्ट के लिए नुकसानकारक है, ये सब बीमारी का कारण है। आज लोग देखा गया है, साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक समय सोने का समय है। इस समय जो जागता है उसके ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सीक्रेट होता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, सब बीमारियां हो रही है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लेट सोता है लेट उठता है उसको हाई ब्लड प्रेशर होने का बहुत ज्यादा संभावना है। जो ज्यादा सोता है कम सोता है, दोनों हमें सारे दिन में दिन रात 24 घंटे में 4-5-6 घंटा तक सोना चाहिए, 5-6 घंटा सो के आराम से अनडिस्टर्ब स्लीप। लेकिन बहुत यंग, अभी 20 साल भी उम्र नहीं हुआ है, सब सिटी से आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, मैं देखता हूं उनको डायबिटीज हो गया है, थायराइड हो गया है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, क्योंकि रात भर कॉल सेंटर का काम करते हैं आईटी में, दिन भर सोते रहते हैं, उल्लू की तरह जीवन। तो रात को जो जागता है उसको सब बीमारियां होगी। तो आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने कब से नियम बनाया, 80 साल पहले आप जाके देखना वो बोर्ड में, 10 करो बस, हमारे दीदी कहती थी 10 करो बस, 10-10:30 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो, सारे वर्ल्ड में जाओ देखना, अमृत वेला शुद्ध भवन है मेरे लाडले जागो, सभी जाग जाते हैं। तो बाबा ने हम सभी को हेल्दी बनाने के लिए कैसी शिक्षा, देखो कितने साल आज साइंटिस्ट उसको प्रूव कर रहे हैं। और जो कम सोता है या ज्यादा सोता है, डायबिटीज 28%, ओबेसिटी 35% और वो डिप्रेशन, उस मेंटल एंग्जाइटी डिप्रेशन, ये सब बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये सब साइंटिफिक एविडेंस से मैं जो दिखा रहा हूं। एंड दूसरा है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। हम क्या क्या खा रहे हैं, कैसे बन गए हैं, देखो टीवी देख के खाते रहते हैं, आजकल हमारे घर घर में यही फैशन हो गया है, हमारे डाइनिंग टेबल के सामने टेलीविजन। पहले हम नीचे बैठ के खाते थे, पालती मार के बैठ के मां परोसती थी, चुपचाप बैठ के खाते थे। आजकल टीवी ऑन कर दिया, खा रहे हैं, क्या खा गए खुद को पता नहीं। लुधियाना से एक कपल आए थे, रिटायर्ड दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे सब अमेरिका में सेटल है। तो मैं उनको बोला देखो टीवी देख के नहीं खाना चाहिए, दोनों को डायबिटीज ब्लड प्रेशर सब बीमारियां। मैं जब उनको समझाया कि टीवी देख के नहीं खाना चाहिए, आराम से बैठ के खाना चाहिए, तो जो मैडम आई थी कहती है डॉक्टर साहब मैं टीवी नहीं देखूं तो मेरा खाना तो नीचे उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है। तो मैं बोला क्या टीवी ऐसा पुश करता है क्या मुंह में? तो ये कितनी गंदी आदत है, बिल्कुल गलत है। और हम सभी कितने समय तक बैठे रहते हैं, देखना टीवी कंप्यूटर देखना, जिसका जीवन देखो आजकल सब सेडेंटरी हो गए हैं, भाग दौड़ तो जीवन तो एकदम सबका खलास। आपको पता है यू नो कि बहुत समय तक बैठे रहेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। देखा गया जो 6-7 घंटा डेली बैठता है उसको ये बीमारियां होगी ही, डायबिटीज ब्लड प्रेशर होना ही है। तो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हजार्डस, लंबे समय तक बैठे रहना, अगर ऑफिस का जॉब है कुछ है, हर घंटे में उठो, थोड़ा सा ऐसा टहल के आ जाके बैठ जाओ, फिर 1 घंटे में उठो, फिर जाके, लेकिन कंटिन्यूअसली पूरा नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। एक सुनामी आ रही है, बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, आप सब सावधान हो, खबरदार हो। बाबा ने ऐसे भी कहा है बॉम्बे तो डूब जाएगा, जिस दिन डूब जाएगा उस दिन समझ जाओ लास्ट समय आ गया, और बॉम्बे में तो आना ही है सुनामी, आप सभी सावधान हो। ये कौन सी सुनामी जानते हो? कौन सी सुनामी? ये है सुनामी। तो 400 किलो 500 किलो के लोग हो गए हैं, एक मिनी एलिफेंट कह सकते हो। खाली भाई लोग ऐसे नहीं है, माताएं भी ऐसी हैं, माताएं भी ऐसी हो गए हैं, और हमारे बच्चे भी ऐसे हो गए हैं देखो। लेकिन ये तो विदेश का सब दिखा रहा हूं, लेकिन हमारे इंडिया में भी कम नहीं है हम। तो इंडिया में भी क्या हालत है देखो, ये लोग सिक्योरिटी लोग फिट होना चाहिए, लेकिन देखो कैसे हालत है। किसने मुझे पूछा ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं, मैं बोला कि बातें कर रहे हैं लेकिन मुंह से बातें नहीं कर रहे हैं। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, योर किड्स विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे बच्चों को बचाओ, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों का मौत होगा। और प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं, सिटी से सारे हमारे माउंट आबू गांव है, 20,000 पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल आइए देखना, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता सब सिटी से सब पेशेंट है, और मां बाप को कोई बीमारी नहीं, छोटे छोटे बच्चे देखो कितनी बीमारियां हैं। क्यों? पहले बच्चे क्या खाते थे, आजकल बच्चे क्या खा रहे हैं? आपको पता है इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स है, कितने ट्रांसफैट है, कितने सेचुरेटेड फैट है, कितने नाइट्रेट्स है, क्या क्या बीमारी, जो कैंसर से लेके क्या क्या बीमारियां पैदा करती है। और ये सब टीवी देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के, ये सब हम, मुझे तो वंडर लगता है, आप दिल्ली जाओ देखना, संडे का दिन, अरे भाई संडे घर में कुछ खाना पीना अच्छा बनाओ, खाओ जो मर्जी, लेकिन सब एक रेस्टोरेंट के सामने बच्चे फच्चे पकड़ के पूरा घंटों तक क्यू में खड़े होंगे जाके बर्गर पिज्जा खाने के लिए, ये सब गंदी चीजें खाने के लिए। बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? पहले माताएं कितनी स्वादिष्ट भोजन घर में बनाते थे, होटल में ऐसा बनता है? जो घर में बनाते हो कितने साफ सुथर करके आप बनाते हो, घर में होटल में बनता है ऐसा? तो खाओगे तो क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसा अन्न ऐसा मन, वो कौन बनाता है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो 5-स्टार होटल में 7-स्टार होटल में जॉब करते हैं, कहते हैं भाई कभी नहीं खाना टमाटर सूप, तो कभी नहीं पीना, क्योंकि सारे जो बचा कुचा बोरी का बोरी सब रात को खरीद के लेके आते हैं, वहां कलर डालते हैं, सब डालते हैं, सूप बनाते हैं, वही पिला के। तो होटल में हम पैसा देते हैं गंद चीजें खाने के लिए, तो बीमार तो होंगे ही। और जो बनाता है उसके मनोभाव कैसे है, कैसी वृत्ति है, वो खाएंगे तो हमारा मन कैसे होगा, सोचिए। तो इसलिए पहले घर में, मैं 10 साल पहले की बात बताता हूं, जब ट्रेन में ट्रैवल करता था, हमेशा देखता था लोग अपने टिफिन के लिए खोल के खा रहे हैं। आज कोई रेयरली देखोगे आपको कोई घर का खाना खाता होगा, जैसे उठ रेलवे स्टेशन कोई आ गया फटाफट उतर के जाके इतना सारा पुड़िया ले आएंगे, बोतल ले आएंगे, फाड़ के खाएंगे। उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? फास्ट फूड। क्यों फास्ट फूड कहते हैं? क्योंकि आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा, घर में रोटी बनाओ ये बनाओ कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा फट से फेंक दिया, फास्ट पुड़िया ले आया, फास्ट फास्ट फट दिया, फास्ट खा लिया, फास्ट बीमारी, फास्ट ऊपर खाओ फास्ट फूड, जिसको ऊपर जाना है फास्ट फूड खाओ। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? ये तो हमको सब पता है क्या क्या हो रहा है, अभी सोल्यूशन क्या है, क्या करना है हमें? मैं तीन बातें बताऊंगा, अगर आप ये सबसे बचना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, जो हेल्दी रहना चाहते हैं हाथ उठाओ। सच? वाह वेरी गुड, बधाई हो। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, मैं आपको तीन बातें शेयर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा भोजन। जब तक आपका भोजन ठीक नहीं होगा, आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हो। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ जर्नल पढ़ रहा था, जिसमें आज की सारी मुख्य बीमारियों की लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 20 और इसका मुख्य कारण की लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 20 देखा गया। सबसे जो कारण में सबसे टफ कारण था डाइट, हमारे भोजन। हमारी माताएं अगर खान पान अच्छी तरह से समझ गए, मैं कहूंगा 90% बीमारियों से सबको मुक्त कर सकते। आज लोग घर में खाते ही नहीं, सब जाके बाहर जाके खाते हैं, गंद खाते हैं, तो क्या होगा सोचिए। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बदलाव लाना है बताऊंगा। दूसरी बात है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आज वर्तमान समय अनुसार मैं कहूंगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके पास गाड़ी मोटरें मोबाइल सबके पास। आप जिसके पास मोबाइल है हाथ उठाओ। गलत सवाल पूछा, किसके पास दो मोबाइल है पूछना चाहिए, दो दो मोबाइल, तीन तीन मोबाइल है। हाँ, इसलिए हम लोग इमोबाइल हो गए हैं। सबके पास सब विज्ञान के साधन, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी जीरो। मैं देखता था बचपन में एक एक माता कितनी मेहनत करती थी, जंगल जाके इतनी लकड़ियां लेके आती थी, सिर पे ढो ढो के फूंक मार मार के चूल्हा में खाना बनाती थी, काला हो जाता था, बर्तन घिसाई करती थी, कपड़े पूरा सटका लगा के धुलाई करती थी, घर में सिलपटा में पूरा मसाला बांटना, चक्की पीसना, ढीकी में धान कूटना, बच्चों का ख्याल करना, कितना मेहनत। अब और नदी में जाके, तालाब से जाके, कुआं से जाके, गागर में एक सिर पर एक कंधे पे लेके उठा के पानी लेके आती थी। आजकल घर बटन दब गया, हो गया सब। जिसके घर में सब कुछ है, आजकल सुखाना भी नहीं पड़ता है कपड़ा। तो इसलिए वर्तमान समय तो एक्सरसाइज, अगर हेल्दी रहना चाहते हो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। पहले लोग बहुत मेहनत करते थे, इसलिए नहीं करो भी चल जाता था, लेकिन आज बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, आज घर घर में सबको टेंशन। टेंशन के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लोग सिगरेट शराब लेते हैं और ही मुसीबत, डॉक्टर के पास जाओ तो आप ट्रैंक्विलाइजर देंगे और ही बीमार होंगे और ही सोते रहोगे। लेकिन एक ही मात्र विधि है, वो मेडिटेशन। मन के विचार को कैसे शुद्ध बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, सीख गए टेंशन फ्री। तो ये तीन बातें हम चर्चा करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा। आज से हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? उन्होंने कहा था, हे मानव, तुम्हारा भोजन दवाई की तरह हो जाए। ओ मैन, लेट फूड बी थाय मेडिसिन। क्या मतलब, क्या मतलब? इतना खाएंगे? नहीं नहीं, देखो आप इतना हट्टा कट्टा 50-60-70 किलो का आदमी अगर होम्योपैथी जैसे एक चम्मच खाएगा तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, कम खाने की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ये दवाई आपको दो बार खानी है, आप चार बार नहीं खा जाते हो। अगर डॉक्टर कहते हैं इसको नाश्ते से पहले खाने, नाश्ते के बाद नहीं खाते हो। कितनी मात्रा में कब खाना है, जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं दवाई के लिए, ठीक इसी तरह भोजन भी हमें कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये समझने की आवश्यकता है। सो यू डोंट हैव टू ईट लेस, कम खाने की बात नहीं है। यू हैव टू ईट राइट, आपको जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो राइट है, अच्छा है, हेल्दी है, वो हमें जानना जरूरी है। सो व्हाट इज एक्चुअली हेल्दी डाइट? आजकल घर घर में सबको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ लिख के दो ना। मैं कहता हूं बिल्कुल कुछ लिखने के नहीं दूंगा, समझो। तो वास्तव में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा फूड चॉइस क्या होना चाहिए, ईटिंग हैबिट कैसे होना चाहिए, वो हमें जानना जरूरी है। सो हेल्दी डाइट, स्वास्थ्यकर भोजन क्या है, हमें समझना चाहिए। आज दुनिया में बेचने वाले तो कुछ भी बेच रहे हैं, बेचने वाले दुनिया में कुछ भी बेच रहे हैं, लेकिन हमें क्या खाना है हमें समझना है। आप मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, सारे सब्जी मंडी में जो भी सब्जी है सारा खरीद के ले आते हो क्या? आपको जो पसंद है वो खरीद के लाते हैं ना, इसी प्रकार हमें क्या खाना है समझना है। ये सब चीजें में बहुत सारी गंदी चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव से, केमिकल से, ये खा के लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, आप जितना वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, उसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमारे भोजन में परिवर्तन लाएं। दूसरी बात है हमारी ईटिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए। बहुत देखो ये लड़की क्या करती है, इधर लैपटॉप में काम कर रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है, कितना खा गई खुद को भी पता नहीं, कितने इकट्ठा करके रखी है। देखो कभी भी काम करते समय नहीं खाना चाहिए, भागम दौड़ी करके जल्दी जल्दी भागा भागा नहीं खाना चाहिए। जो जल्दी जल्दी खाता है वो ज्यादा खाता है, इसलिए वो मोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे खाएंगे तो आपके ब्रेन में सेंटर है, सेटाइटी सेंटर, वो तृप्त हो जाते हो आप। कम खाने के बाद भी ऐसा लगेगा एनफ बस। तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है, बातें करते करते नहीं खाना है। जो बातें करते करते खाता है, कभी कभी सांस नली से एक घुस गया कुछ फूड पार्टिकल, चोकिंग होके विदेश में हर साल कितने लोग मर जाते हैं। बातें करते हुए नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे आराम से प्यार से खाओ, अच्छी तरह से चबा के खाओ तो जाके ठीक रहेगा। ठीक है, एंड हेल्दी डाइट इज अ बैलेंस डाइट। हमारा भोजन बैलेंस होना चाहिए। भारत में देखा गया है कि मेजोरिटी हमारे थाली में 75% तक चावल चपाती लाद दिया जाता है, थोड़ा सा चटनी अचार मिर्ची की दाल थोड़ी सी, ये बिल्कुल गलत है, जिसके कारण ही सारी बीमारियां हो रही है। हमारे थाली में तो 50% तक वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स 50%, 1/4 चावल चपाती, 1/4 प्रोटीन, दाल आप दही लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, 1/4 होना चाहिए, तो ही आप सदा हेल्दी रह सकते हो। एक बैलेंस डाइट का मॉडल थाली आपको दिखाता हूं, देखिए दिस इज अ मॉडल ऑफ बैलेंस्ड डाइट। इसमें देखिए तीन चपाती है, रूखी चपाती, इसमें घी नहीं। आपको घी लेना है तो हफ्ते में एक दिन। आप कहेंगे डॉक्टर साहब नई बात सुना रहे हो, हमारे दादे परदादे नाना नानी तो इतने इतने घी खा जाते थे। आप खा सकते हो, मना नहीं, साइंटिस्ट भी प्रूव कर रहे हैं घी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मेहनत तो करो। घी खा लिया उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, क्या होगा, क्या होगा? तो ये सब चीजें बहुत नुकसान करेगा। आप अगर बहुत मेहनत करते हो, जितना भी घी पी जाओ कुछ नहीं होगा। हमें अगर अभी वर्तमान जमाने में कोई इतना हार्ड लेबर करता नहीं है, इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन घी खाना जरूरी है। घी बिल्कुल नहीं खाएंगे तो आपकी जो स्किन है एकदम बहुत कम एज में बुढ़ापा जैसा एकदम रिंकल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे सेल वॉल सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो घी में मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। तो एक दिन भले घी लगाओ, बटर घी ये सब चीजें, बाकी दिन सूखी चपाती। जो बहुत मेहनत करता है 5-6 चपाती खा जाए चलेगा। अगर चावल खाने की इच्छा है तो एक चपाती माइनस एक कटोरी चावल ले सकते हो। आप सब्जी 2 कटोरी खा जाओ, सलाद 2 कटोरी खा जाओ, दाल 2 कटोरी खा जाओ, आप छाछ बना के 3-4 ग्लास पी जाओ चलेगा, लेकिन चावल चपाती नहीं बढ़ानी है क्वांटिटी। और तेल घी मिनिमम, हमारे देश में भारत में 4 गुना ज्यादा नमक और 4 गुना ज्यादा तेल घी खा रहे हैं, जिसके कारण भारत भी मोटे होते, हमारी मैक्सिमम हमारी माताएं मोटी होती जा रही है। दिल्ली में लास्ट ईयर WHO से एक टीम आए थे, सर्वे किए, 60% माताएं मोटी हो चुकी है, 50% को हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। तो हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो वर्तमान हम सभी जितना हो सके माताएं घर में तेल घी कम करो और चावल चपाती कम करो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जितना खाना है खाओ, आपको ये बीमारी से अगर बचना है तो। एंड अवॉइड फास्ट फूड एंड बेकरी प्रोडक्ट। ये बेकरी प्रोडक्ट जितने भी मिलता है आजकल, शुगर फ्री बिस्किट, केक्स, कुकीज, पेस्ट्री, ये सब में ट्रांसफैट होता है, हार्ट अटैक होता है। हमारे हॉस्पिटल में हर प्रकार का बिस्किट खिला के मैं देख लिया, 2 बिस्किट खाते ही शुगर सीधा 100 बढ़ जाता है, एकदम सीधा 100 बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हम नहीं खाना चाहिए। हमारे देश में कोई नहीं खाता था ये सब चीजें। 250 साल पहले तो हमारे देश में चाय भी लोग नहीं पीते थे, विदेशी लोग आके चाय बिस्किट खिलाना सिखाया हमको। तो ये सब चीजें जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ही अच्छा है। ये सब अनहेल्दी क्यों है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, कैलोरीज, फैट, सोडियम बहुत ज्यादा, लो फाइबर है, इसके कारण ही बीमारी। 2 मिनट सब बाबा को याद करते हैं, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर शुरू। तो सुना रहा था इस सबको फास्ट फूड जंक फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, खा के मोटे होते जा रहे हैं लोग,
इसमें फैट कितना है, सोडियम कितना है, फाइबर बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब बीमारियां हो रही है। और ये सब जंक फूड में सब आते हैं, ये हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, ये सब में बहुत सारे शुगर होता है, ये सब खा के भी बच्चे हमारे मोटे होते जा रहे हैं। ये कंडेंस मिल्क आता है, माताएं ये सब में मिठाइयां बनाती हैं, इसमें भी फुल ऑफ शुगर, ये सिरप मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीजें, प्रिजर्वेटिव कितना होता है, इसके वीडियो आप दिखाऊंगा क्या क्या नुकसान होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। और जूस कभी भी नहीं पीना चाहिए, जब तक दांत है जूस नहीं पियो, फल खाओ, चबा के खाओ चलेगा। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, आपको पढ़े होंगे कि नहीं पता है कि नहीं पता नहीं, साउथ इंडिया में कद्दू का जूस पी के कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, पढ़े होंगे सभी। तो कोई भी जूस नहीं पियो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ चलेगा, चबा के खाएंगे, आपके मसूड़े की एक्सरसाइज होगा। दांत जब तक है जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जूस जब बनाते हो उसमें सारे रसायन निकल जाते हैं, खाते पीते ही फट से एकदम शुगर बढ़ जाता है, फिर डायबिटीज हो जाएगा। तो जूस क्यों पिए, आजकल फुर्सत ही नहीं किसको, भागम दौड़ी लाइफ में फटाफट जूस बना दिया पी लिया, नहीं, चबा के खाओ अच्छा है। और ये शराब, शुगर केन, ये सब जूस, ये सब बहुत हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। शुगर केन जिसको डायबिटीज नहीं है, थोड़ा बहुत पियेंगे चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ कम कम खाओ, कोई बात नहीं। हमारे देवताएं 56 प्रकार का भोग खाते थे, कोई व्यक्ति 56 प्रकार का खाएगा तो कितना खाएगा, कितना कितना खाएगा। हमको जो अच्छा लगता है और ले आओ, प्रॉब्लम है। कम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर शुगर केन जूस पीते हैं तो भी इतना पियो, कोई बात नहीं। लेकिन शराब इतना भी नहीं पीना है, डॉक्टर कहेंगे थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि डॉक्टर ही खुद पीते हैं। लेकिन शराब जो पॉइजन पॉइजन है, ये थोड़ा पीने से भी नुकसान करेगा, ज्यादा पीने से भी नुकसान करेगा। बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी सोशलाइजेशन के लिए, कभी पार्टी में जरा सा नहीं, बिल्कुल नहीं, बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दिया। और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब है, आपका लीवर खराब होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगी, डायबिटीज के लिए तो खतरा है, बिल्कुल एकदम जानी दुश्मन है, हार्ट अटैक होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, यस, देखिए किसी भी कोई भी ब्रांड का कुछ भी हो, ये सब नुकसानकारक है, भले उसका कहेंगे कि कुछ फायदा होगा आपको। जी आप 15 मिनट, 9:45 तक पूरा कर दूंगा, हो जाएगा, और थोड़े स्लाइड है। एक्सरसाइज हमें क्या क्यों करना है, नहीं, कोई भी ब्रांड पियो, कुछ भी पियो, सब नुकसान करेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो साइंस इज एवर चेंजिंग, आज डॉक्टर्स जो कहते हैं कल फिर दूसरा कोई उसको प्रूव करता है ये गलत है, फिर दूसरा, हमेशा चेंजिंग साइंस। आप देखना मेडिकल साइंस में कितना क्या क्या चेंज हो गया, मैं आपको बताता हूं। पहले कहते थे मीट, आप एनिमल प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन, बायोलॉजिकल प्रोटीन, कहेंगे नहीं 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 रेड मीट खाओ, कभी क्या, इतने प्रकार के एविडेंसेस, और आज तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। तो इसलिए ये सब बातों में विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। और एक्सरसाइज क्यों करना है, क्योंकि एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो ज्वाइंट स्टिफनेस नहीं होगा, नहीं तो थोड़े दिन के बाद देखना है मेरा हाथ नहीं उठता है, पीछे नहीं जाता है, टांग नहीं मुड़ता है, स्टिफनेस होगा। और आपके देखना माताएं खास करके 50 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद, चलते चलते जरा सा स्लिप हो गया, गिर गए, फ्रैक्चर हो जाता है, एक स्टेप मिस हो गया, फ्रैक्चर हो जाता है, ओल्ड एज में सब कमजोर हो जाता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डी मान स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है डिटॉक्स हो जाएगा आपके बॉडी की गंदगी। जब हम खाना खाते हैं बॉडी में, उसका यूज होने के बाद जो अनावश्यक चीजें हैं, हमारे सांस से, हमारे पसीने से, हमारे यूरिन से, लेटरिन से, हम उसको निष्कासित करते हैं, जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, ऐसी कार में घूम रहा है, ऐसी हॉल में बैठा रहता है, क्या होगा, फिर क्राम्प्स होगा, पेन होगा, फिर नेचुरोपैथी सेंटर में लोग जाते हैं, हॉट बाथ, स्टीम बाथ, मॉड बाथ, सन बाथ, फिर घिसाई रगड़ाई करा के 1000 रुपया देखे, फिर जाके अरे क्यों ऐसा करते हो, डेली एक्सरसाइज करो, देखो आपका पूरा सब डिटॉक्स हो जाओगे, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं हम रोज इतना घर का काम, इतना ऑफिस का काम, भागम दौड़ी, एक्सरसाइज क्यों करें, लेकिन नहीं, जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज क्यों करना पड़ेगा। देखिए एक लेडी जाती है ऑफिस में, सवेरे से लेकर रात तक, शाम तक ऑफिस में बैठी रहती है पूरा, शाम को आके हाय मेरा गर्दन, हाय मेरा कमर, सारा दिन कंगारू जैसा बैठ के ऐसा ऐसा करेगी तो हो गए।
चाहे ऑफिस का काम करें चाहे घर का काम करें, इसमें हमारे बॉडी का हर ज्वाइंट मसल्स बोन यूज नहीं होता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। आज दुनिया में जितने भी प्रकार की एक्सरसाइज सिखाते हैं सब चार प्रकार के हैं। एक है एरोबिक जिसमें आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, दूसरा होता है एनएरोबिक जो जिमखाना में जाके आप सभी करते हो, तीसरी बात है आजकल बहुत पॉपुलर है इसको योगासन कह देते हैं, वास्तव में ये आसन है, योगासन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, पोस्चुरल एक्सरसाइज बॉडी को लचीला रखने के लिए, और चौथा बहुत पॉपुलर अनुलोम विलोम कपाल भाति भास्त्रिका। ये चार में से सबसे कौन सा अच्छा है आजकल लोग करते हैं, ऐसा कर सकते हो? याद रखना ऐसा कर दे यार, ना टांग ऐसे ही रह जाएगी उतरे ही नहीं तो ये सब हर एक बस की बात नहीं है, बहुत पॉपुलर है लोग, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया में बहुत प्रकार का एक्सरसाइज सिखाते हैं, बट व्हिच वन इज द बेस्ट, व्हिच वन इज द बेस्ट, ये कोई भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। वॉकिंग भी कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि जब आप चलते हो आपका हाथ का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, आपके टांग भी ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ये साइड मसल्स यूज नहीं हो रहा है, पीछे मसल्स यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम ग्लोबल हॉस्पिटल में एक वॉकिंग सिखाते हैं, उसका नाम है वॉकिंग योगा। आप घर में इतने एरिया में आराम से कैसे चलो जिसमें परमात्मा का नाम लेते हुए आप कैसे चलना है। हमारे भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंगम बहुत मशहूर है, हमारे शास्त्र में लिखा है कोई अगर सवेरे शाम द्वादश ज्योतिर्लिंगम का नाम स्मरण करता है तो सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, सात जन्म का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है शिव सहस्र नाम, शिव बाबा के हजार नाम, उसमें से मैं 300 नाम सिलेक्ट किया, शंभुरी पशुपति शिव सुन महेश्वर शंकर सरवई सान अग्री सगरी समृढ़, ऐसा हजार नाम है, तो उसमें से 300 नाम लेके एक गीत बनवाया, जो गीत आप सुन के घर में कैसे आराम से चल सकते हो। वेरी सिंपल, आधा घंटा जो करेगा, मैं 100% गारंटी देता हूं, जो एक महीना करके 6-6 किलो लोग कम किए हैं। यहाँ अभी एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, कभी और टाइम में करा दूंगा, तो अभी इस समय खाने के बाद नहीं करना होता है, कभी भी एक्सरसाइज खाली पेट में करना है, खाने के बाद नहीं करना चाहिए, फुल पेट थोड़ा सा हल्का खा के कर सकते हो, लेकिन इतना इफेक्टिव एक्सरसाइज लोगों का बता देंगे, कभी भी टाइम फिक्स करेंगे बता दूंगा। तो कहने का मतलब है इतना सिंपल है, आधा घंटा सिर्फ एक्सरसाइज करो, होल बॉडी का पूरा वर्कआउट हो जाता है, सिंपल एक्सरसाइज है। सो कोई भी एक्सरसाइज दुनिया में जो सिखाते हैं कंप्लीट नहीं है, हम ग्लोबल हॉस्पिटल में जो एक्सरसाइज सिखाते हैं इट इज होलिस्टिक एक्सरसाइज, तन भी दुरुस्त मन भी दुरुस्त हो जाएगा, तो इसमें इट इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक एनरोबिक, उसमें एक्यूप्रेशर बॉडी मसाज, उसमें बैलेंस स्ट्रेच अप वार्म अप सब कुछ है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब गोल्डन एज था लक्ष्मी नारायण कौन सा एक्सरसाइज करते थे? अच्छा, जब त्रेता युग था, जब राम सीता कितने बढ़िया एकदम फिजिक देखे, कौन से जिमखाना में जाते थे? अनुलोम विलोम कपाल भाती करते थे क्या? जब द्वापर युग आया तो भी हम खेती बाड़ी करके कुआं से पानी उठा के कैसे फिट थे, लेकिन जब कलयुग आ गया खाली माताएं नहीं भाई लोग भी कैसे हैं देख लो क्या हाल हो गया। तो इसलिए अभी भगवान कहते हैं कीप फिट विथ म्यूजिक। सत्ययुग त्रेतायुग में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता आदि संगीत के साथ डांस करते थे, इसलिए आज भी साइंटिस्ट कहते हैं डांस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आप एक घंटा चलो 10-15 मिनट डांस करो दोनों बराबर है, लेकिन डांस करना आता ही नहीं है, क्यों? लोगों के जीवन में खुशी ही नहीं है तो डांस कैसे करेंगे, जो खुश रहता है वो डांस करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, अभी समय की मांग है कि ऐसा एक एक्सरसाइज हो जिसमें हमारा तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो, आत्मा भी दुरुस्त, सब दुरुस्त हो जाए। वही एक्सरसाइज हम ग्लोबल हॉस्पिटल में सिखाते हैं, जो बाबा ने कहा बाबा की गीत के साथ शरीर को कैसे आप करो ताकि फिट रहो। देखो ब्रह्मा बाबा भी फिट रखने के लिए वॉकिंग पहाड़ी चढ़ाने लेके जाते थे, ड्रिल कराते थे, खेलकूद कराते थे, तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सो होलिस्टिक एक्सरसाइज नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द माइंड एंड स्पिरिट नीड टू बी रिज्यूनेटेड। तो ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें सब कुछ है जी। हॉस्पिटल में हम रोज सवेरे शाम कराते हैं, जितने मैं गायत्री बहन से बात कराऊंगा फिर देखूंगा जैसे टाइम सुटेबल होता है, लेकिन याद रखना एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे हम बचपन से खा रहे हैं, दो दिन भी नहीं खाओ तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कितने सालों से भी एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन दो दिन भी एक्सरसाइज छोड़ दिया तो एक्सरसाइज का बेनिफिट खत्म। तो इसलिए एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। देखो मोटू, देखिए दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, पतला हो गया, एक्सरसाइज छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया ट्यू फूल गया, फिर से दौड़ रहा है, फिर से दौड़ रहा है, फिर से दौड़ रहा है, फिर पतला हो गया, फिर छोड़ दिया एक्सरसाइज, जैसे छोड़ दिया फिर ट्यू फूल गया, फिर दौड़ रहा है। तो एक्सरसाइज कभी छोड़ना नहीं, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जो एक्सरसाइज करने के लिए जिसको फुर्सत नहीं है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जरूर फुर्सत मिलेगा। तो क्या पसंद है, क्या पसंद है? ये कौन है? स्वयं परमात्मा शिव नटराज के रूप में डांस कर रहे हैं। ये कौन है? देखो गणपति खुद, वो भी डांस कर रहे हैं। तो कहीं भी संगीत बजता है तो बच्चे बूढ़े सबका हाथ पांव ऐसे हिलना शुरू हो जाता है ना? नहीं, अरे मनुष्य तो क्या तो जब संगीत बजता है सब कोई, सब जानवर देखना, अब मोर नाचता है आप सभी जानते हो, सांप भी नाचता है आप जानते हो, हर जानवर पशु पंछी, यस। सो वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी, ओके ओके। एंड मेडिटेशन, थर्ड थिंग इज मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीविंग। जो मेडिटेशन करेगा खुश रहेगा वही डांस कर पाएगा, एक्सरसाइज करेगा नहीं तो ठीक है कल करूंगा परसों करूंगा। तो पहले मूड को ठीक करना पड़ेगा। सो कुछ लोग ये आसन करते हैं, कहते हैं मैं योगा कर रहा हूं, वास्तव में ये योगा है क्या? नहीं नहीं, ये योगा नहीं है वास्तव में। मैं आपको बताता हूं, अभी एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायबिटीज एंड योगा। तो बहुत लोग आके वहां सिखाए, बहुत सारे बहुत देश से आए थे। तो आप नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कर सकता है डायबिटीज पेशेंट, तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं ये आसन करने से डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये आसन करने से डायबिटीज, एक भी नहीं कर सकते मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं उनको, मेरा टर्न जब आया मैं बोला कि हमारा भारत में सबसे प्राचीन शास्त्र है हमारा श्रीमद् भगवद गीता, जिसको एक योग शास्त्र कहा जाता है। उसमें 18 अध्याय, ज्ञान योग, भक्ति योग, संख्या, सब योग योग लिखा है। अर्जुन को जब सीवियर डिप्रेशन हो गया, टेंशन में आ गया, हाथ पांव कांप करके गांडीव को एकदम जमीन में पटका के गाल में हाथ रख के कहा, हे प्रभु मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे समय पर भगवान उसको योग सिखाए। कौन सा योग सिखाए? भगवान ने कहा क्या, जाओ वहां सिर नीचे और टांग ऊपर करके एक घंटा लटक जाओ, ठीक हो जाएगा तुम्हारा डिप्रेशन? भगवान ने उसको योग सिखाया। वो कोई पोस्चुरल बॉडी का एक्सरसाइज नहीं था, इट इज ए प्योरली मेंटल प्रोसीजर। तो राजयोग मेडिटेशन जो भगवान सिखा के गए थे, जो 18 अध्याय अर्जुन समझने के बाद लास्ट में क्या कहता, हे प्रभु मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया, मैं कर्तव्य में अभी जुट जाऊंगा। तो मानसिक शक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए वो राजयोग मेडिटेशन फिर से हमारे बहने सिखाते हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात सुनाता हूं, सुनिए। दुनिया में तीन ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा वाले लोग हैं, पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है, लेकिन उसी तीन देश में ही सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी है लोगों को, और उसी तीन देश में ही सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। कौन सा तीन देश है जानते हो? यूएस, जापान और स्वीडन। हम सोचते हैं पैसा ज्यादा होगा तो खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक रहेंगे। देख लीजिए हालत दुनिया की। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थनीतिज्ञ होके गए थे चाणक्य, उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? उन्होंने कहा था अर्थ अनर्थम चिंतय नित्यम नास्ति ततः सुख लेसः सत्यम। अर्थ को अनर्थ समझ लो, उसमें इतना भी सुख नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। पैसा तो चाहिए, हर कदम में पैसा चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न। कहने का मतलब, हे प्रभु मुझे इतना पैसा दो कि कभी भी कोई मेहमान आए, अतिथि अभ्यागत आए, साधु संन्यासी हमारे घर से भूखा ना जाए, बस इतना चाहिए। आदमी आज इतना इकट्ठा करना चाहता है जिसके कारण टेंशन, स्ट्रेस, बीमारियां। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आज स्ट्रेस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। इसलिए स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त होने के लिए एक ही मात्र विधि है। मुझे तो बहुत दुख होता है, जानते हैं अभी ये 15 दिन पहले एक यंग कपल आए थे, जो भाई था उसको बहुत टेंशन, शराब पीता था, मेरे पास किसने भेजा। मैं उसको काउंसलिंग किया, एडमिट हो जाओ ठीक हो जाओगे, बोला कि नहीं नहीं मैं एडमिट नहीं होगा। होटल में रहे एक दो दिन, चले गए। अभी मैसेज आया सुसाइड कर दिया, एकदम यंग 35 एज बने हुआ। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मौत का कारण स्ट्रेस है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई होमिसाइड कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई हार्ट अटैक हो रहा है। तो स्ट्रेस, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही मात्र विधि है, वो है, मैं डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं, मैं जब पास किया एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, वहां डेली 200 250 300 पेशेंट देखता था, और लोग आके एक ही साथ मच्छी बाजार जैसा चारों तरफ घेरा करके एक ही साथ चिल्लाएंगे, कैसा लगेगा? मुझे तो लगता था कि बहुत कम एज में मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। खाली चिल्लाते तो अलग बात है, कुछ पेशेंट एकदम नजदीक आके एक हाथ मेरे छाती में, दूसरे हाथ मेरे पीठ में, जोर से दबा के, डॉक्टर साहब मेरा यहां दुखता है, मेरा यहां दुखता है। अरे भाई तेरा छाती दबाना, मेरा छाती क्यों दबा रहा है? मैं कहता था पागल हो जाऊंगा। ऐसे समय पर मैं जब मेडिटेशन सीखा, पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे दो फ्रेंड्स, हम क्लासमेट थे, दो फ्रेंड्स हार्ट अटैक होके जा चुके हैं। लास्ट मंथ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, उसको हार्ट अटैक हुआ, 3 स्टेंट लगा। अभी माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस था ज्ञान सरोवर में, मेरे जितने फ्रेंड्स क्लासमेट है सब इंसुलिन लगा रहे हैं, सब इंसुलिन लगा रहे हैं। बोले कि भाई हम फंस गए कहीं, तो बहुत लकी है। तो कहने का मतलब है, आज दुनिया में कोई भी हो टेंशन से मुक्त नहीं है, अगर हम मेडिटेशन सीखेंगे जीवन सही सलामत रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन, एंड सेल्फ रिलेशन इज रिलेशन ऑफ द रियल आई, रियली मैं कौन हूं। एंड मेडिटेशन इज खुद को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करना, एंड इट इज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आंखें बंद करके सो जाना उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है, जागृत अवस्था में रहकर पिता परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करना, उसका नाम मेडिटेशन है। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को याद करता है, ऐसे ही याद करना है बाबा को। और जैसे छोटा बच्चा को कोई पद्मासन शीर्षासन करना नहीं पड़ेगा, नदी तट कल्पवट मृग खाल की जरूरत नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भी अपने माँ बाप को याद करता है, ऐसे ही पिता परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करना, जिससे आप आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे, जयफुल एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस अनुभव करेंगे। और परमात्मा मेडिटेशन करना मना परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, खाली हम तोता जैसा रटते थे, तुम्हें वो माता चो पिता तुम, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव है। एंड मेडिटेशन करना मना जैसे एक छोटा बच्चा अपना माँ की गोदी में निश्चिंत अनुभव करता है, कोई दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको कोई, इसी प्रकार परमात्मा माँ की गोदी में संपूर्ण स्ट्रेस फ्री अनुभव करना, उसका नाम मेडिटेशन है। कैलेंडर कहता है मुझे हर महीना टर्न करो, मनी कहता है मुझे खूब अर्न करो, टाइम कहता है मेरी प्लानिंग करो, फ्यूचर कहता है मुझे विन करो, ब्यूटी कहता है मुझे प्यार करो, परंतु शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मुझे याद करो। कितने सेंटिमेंटल बात है। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके बच्चों को भी करोड़ों रुपया देके सेट कर दिए हो कहीं, आपके बच्चे अगर कभी आपको कुछ नहीं भेजते हैं, नहीं पूछते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहें मेरे बच्चे मेरे पास सब कुछ है, भले मत भेजो, लेकिन कम से कम महीने में एक बार बात तो करो, फोन तो करो, है ना? नहीं तो हम भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अगर आपके बच्चे कभी भी आपको बात नहीं करते, आपसे कुछ भी नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे बच्चे बच्चे नहीं मर गए। तो हम भी अगर भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान भी क्या कहेंगे? बच्चे है नहीं। जो भगवान को प्रेम से याद करता है भगवान भी उसको याद करते हैं, जो भगवान को ध्यान करता है भगवान भी उसका ध्यान रखते हैं। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन एक यात्रा है, देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, देयर विल बी लॉस एंड गेन, बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ देर विल बी सनशाइन एंड रेन, देर विल बी प्लेजर एंड पेन, देर विल बी लॉस एंड गेन, बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन। सो 5 सेकेंड आप एक सेल्फी लेते हो, 5 सेकेंड का फोटो कितना अच्छा लगता है, जो भी देखता है कितना खुश हो जाता है। अगर जीवन में सदा मुस्कुराते रहोगे तो कैसा होगा सोच लो। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस और वोकालिस्ट थी, कहती थी कि जीवन में अगर आपको 100 बातें आती है आपको रुलाने के लिए, जीवन को कह दो मेरे पास 1000 बातें हैं मुस्कुराने के लिए, तुम मुझे क्या रुलाओगे? ठीक है ना? नहीं, हमारे पास भी एक सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से या तो देखिए, सबसे बढ़िया दवाई है टेंशन से, सबसे बेस्ट एंटीडोट है मुस्कुराना, खुश रहना। एक छोटा बच्चा कितने बार मुस्कुराता है जानते हैं? माताएं देखी होंगी, कोई भी नहीं होगा, इतना छोटा बच्चा दिन में 250 बार मुस्कुराती है, एक छोटा बच्चा 250 बार मुस्कुराता है। हम लोग कितने बार मुस्कुराते हैं? तो जीवन में जो खुश रहता है उसको कोई बीमारी नहीं। देवी देवताओं के जितने चित्र देख लो, सबका चित्र चेहरा कैसा। आजकल लोग लिपस्टिक भी लगाए हैं लेकिन चेहरा तो ऑलवेज लाफ। एंड कौन मुस्कुराता है? जो खुश रहता है। खुश कैसे रहेंगे? जिसके पास धन संपत्ति महल माड़ी गाड़ी है खुश है? नहीं। हमारी सोच विचार क्या है उसी आधार से खुशी होती है। सो ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, बिकॉज इट इज द चीपेस्ट मेडिसिन, सबसे सस्ती दवाई, ठीक है। एंड रिलैक्स, भगवान को सारे सौंप के देखो। मेडिटेशन करने से परमात्मा को सब कुछ सौंप के देखो, फिर देखना एकदम जीवन सदा खुश और सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने कितने सहज तरीके से हमें बताया कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमें उसको कैसे संभालना है। और उन्होंने इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें दोबारा स्मरण कराया कि हमें किस स्मृति में रहना है, परमात्मा को कैसे उनकी जो कही बातें अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को खुशगवार बनाना है। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत जोर से तालियां। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।